नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सबका कुछ नया सुने विद सजीव सारथी में। तो हम लोग नए नए म्यूज़िक को एक्सप्लोर करते रहते हैं, नई नई चीज़ें जो बहुत यूजुअल हैं, जो आप सब लोग डेली यहाँ वहाँ सुन लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा कम बात करके मैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए खोजता रहूँ, कुछ नई नई चीज़ें ढूंढ के लाऊँ, ताकि अलग अलग तरह के संगीत से आपका वास्ता जुड़ता रहे। तो आज जिस एल्बम को मैं चर्चा लेकर आया हूँ, उसका नाम है डेजर्ट सेशन विद मामे खान। नाउ अगर आप जानते हैं कि राजस्थान का जो म्यूज़िक है वो बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही प्यारा और बहुत अलग तरह का फ्लेवर का है। हम सब पसंद करते हैं राजस्थानी फोक म्यूज़िक को, तो उसमें एक स्टाइल है मंगनियार स्टाइल का फोक जो होता है, वो आपने सुना ही होगा। एक अलग घराना है ये, जहाँ का जो म्यूज़िक है उसके अंदर एक अलग तरह की एक महक है, एक खुशबू है उसके अंदर। तो उस घराने से आते हैं हमारे मामे खान साहब, बहुत ही मशहूर गायक हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इनकी जो हिस्ट्री रही है वो कुछ इस तरह से रही है कि इला अरुण जो है उनकी बेटी की शादी थी इशिता अरुण की, और उस शादी में मामे खान आए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया, और उस शादी में बतौर मेहमान मौजूद थे शंकर एहसान और लॉय। तो शंकर को जो है मामे की आवाज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने इमिडिएटली उन्हें साइन किया। फिल्म बन रही थी लक बाई चांस, लक बाई चांस में बहुत ही एक खूबसूरत मशहूर गाना था बावरे, जिसको मामे खान ने परफॉर्म किया। देन उसके बाद फिर आगे भी वो शंकर एहसान लोहे के लिए उन्होंने गाने गाए, और देन उसके बाद फिर अमित त्रिवेदी के साथ भी उनका कोलाब्रेशन हुआ, चौधरी गाना जो है जो कुक स्टूडियो में जारी हुआ था, बहुत मशहूर हुआ, यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त गाना है वो, चौधरी जो है सबसे, मेरे ख्याल से मामे खान का सबसे फेमस गाना रहा है वो। तो ये जो एल्बम है ये उनका एक सोलो एल्बम है जिसका नाम है डेजर्ट सेशन, और इसमें कुल 7 गाने हैं और लगभग लेंथ इसकी है 42 मिनट की। तो थोड़ा सा मैं इस एल्बम के बारे में भी आपको बताता चलूँ। तो पहला जो ओपनिंग ट्रैक होता है वो है सावन आयो। तो ये जो गाना है ये बेसिकली, क्योंकि देखिए राजस्थान में जो है, अगर आपको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो रेन है उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, और जब आता है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक के साथ एंजॉय करते हैं। तो ये जो गाना है ये उस म्यूज़िक का, उस रेन का, यानी कि जब बारिश होती है उसका सेलिब्रेशन है बेसिकली। और जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा खमचा, चिमटा, करताल, ढोलक, ढोलकी एक छोटी चीज़ होती है वो, मंजीरा, एक तारा, यू नो, ये सब चीज़ें मिलाकर जो है इनका एक इंस्ट्रूमेंटल का सेक्शन बनता है। उसी तरह से ये मामे खान का ट्रेडिशनल अंदाज में ये बहुत प्यारा सा एक वो है, आप उनको सुनेंगे तो आपको वो फील आएगी, एक जो रेन वाली फीलिंग होती है ना, रेन का जो सेलिब्रेशन होता है वो आपको इस गाने में मिलेगा। केसरिया बालम जो है वो अगला गाना है इसका, जो केसरिया बालम जो है आपको पता ही है कि ये सबसे ज़्यादा फेमस राजस्थानी फोक है, जिसे इससे पहले भी पता नहीं कितने गायकों ने अपने अपनी आवाज़ों में सेलिब्रेट किया है, लेकिन मामे खान का जो अंदाज़ है थोड़ा सा अलग है, कहीं ना कहीं कुछ ताल में डिफरेंस है जो हम महसूस कर पाते हैं सुनते हुए। तो केसरिया बालम जो है ये एक मांड स्टाइल का गीत है जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक मशहूर है, और जितने भी टूरिस्ट जाते हैं उनको सबसे पहले इसी गीत से उनका स्वागत किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो हृदयनाथ मंगेशकर ने फिल्म लेकिन में इसको लता मंगेशकर से गवाया था, और बहुत शानदार, बहुत मशहूर तरीके से, उसके बाद ही बहुत लोगों ने इसको अटैम्प्ट किया है। तो मामे खान का अटैम्प्ट बिल्कुल अलग तरह का है थोड़ा सा, आप उसको सुनेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। तो केसरिया का जो वर्ड होता है, केसरिया बालम का जो मतलब होता है वो ये होता है कि केसर जैसा बालम, केसर जो है एक सिंबल है अच्छी हेल्थ का, अच्छे सौंदर्य का, और तो उस तरह के जो बालम है, उस तरह का जो प्रेमी है उसको स्वागत किया जा रहा है और उसको ये बोला जा रहा है। जनरली ये जो गाना है ना ये लेडीज़ गाती हैं, मतलब लड़कियां गाती हैं, राजस्थानी लड़कियां जो हैं, क्योंकि उनके पति जो हैं अलग अलग देशों में जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको वापस बुलाने के लिए कि भाई देखो तुम्हारा जो राजस्थान है तुम वो इतना खूबसूरत है कि तुम इसको छोड़कर तो चले गए हो, लेकिन कभी कभी आओ, दर्शन दो, पधारो, देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये इस गाने का बेसिकली मीनिंग है, लेकिन इसको जनरली आज के दौर में जितने भी टूरिस्ट जाते हैं राजस्थान में घूमने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस गाने का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक जिसको आप सुनेंगे तो आपको जो आपने पहले सुन रखा है उससे कुछ अलग ज़रूर मिलेगा इसके अंदर। जो एल्बम का बेस्ट सॉन्ग है वो है तीसरा गाना जिसका नाम है बुल्ला बुल्ला की जाना मैं कौन। तो ये तो आपको पता ही है कि बाबा बुल्ले शाह का लिखा हुआ है। और सूफीवाद का तो एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको आपकी जो जर्नी है वो आउटवर्ड नहीं इनवर्ड होनी चाहिए, यानी कि आपने अपने अंदर जो है खोजना है उस ईश्वर को जो आपके अंदर है। तो वो इनवर्ड की जर्नी में जो है वो बुल्ले शाह जो है वो बुल्ला की जाना में कौन, आपको याद होगा रब्बी शेरगिल ने बहुत मशहूर कर दिया था इस गाने को। उससे पहले भी एक पाकिस्तानी एल्बम आई थी जुनून, एक बैंड था पाकिस्तानी, आज़ादी करके शायद एक उनकी एल्बम आई थी, उसमें उन्होंने ये गाना परफॉर्म किया था। तो ऑलरेडी इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग। अगेन यहाँ पे मामे खान जो हैं वो बिल्कुल इसको इसको ट्रीटमेंट ही उन्होंने अलग दिया है। जब वो जिस तरह से चैंटिंग करते हैं बुल्ला 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 बुल्ला, वो आप सुनेंगे ना तो यू विल फील दैट, यू नो, मतलब एक अलग जॉनर में आप लेके जाएंगे आपको, आपको बिल्कुल आप सुनेंगे, आंखें बंद करके सुनोगे ना तो आपको लगेगा कहीं और आप पहुंच गए। और जो फिलॉसफी है इस गाने के पीछे वो इतनी डीप है, इतनी रूटन है कि आपको बिल्कुल बहा के लेके जाएगी। देखिए क्या होता है, इंसान को जिस परमेश्वर ने बनाया है, जिसने भी इंसान को बनाया है, उसने तो सिर्फ उसको प्योर फॉर्म में बनाया है ना। तो बुल्ला जब अपने अंदर झांकता है तो वो ये देखता है कि यार मैं तो वही हूँ, इंसान हूँ, ठीक है, बाकी चाहे मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मेरी जात, मेरी धर्म, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये सब चीज़ें समाज ने, दुनिया ने मुझे दिया है, तो मैं तो एक इंसान हूँ। अब यही फिलॉसफी जो है जब आप सुनते हैं मामे खान की आवाज़ में तो आप सच में एक आनंद से भर जाएंगे, एक अलग तरह की शांति आपको इस ट्रैक को सुनते हुए मिलेगी। सीरियसली कह रहा हूँ मैं आपको, ये बेस्ट सॉन्ग है इस एल्बम का, और इसको आप रिपीट मोड पे सुन सकते हैं एंड यू विल एन्जॉय। आप एक अलग तरह का ट्रांस आपको महसूस कर पाएंगे, मेडिटेटिव काइंड ऑफ सॉन्ग है ये, बहुत ही शानदार, अनबिलीवेबल। और इसके बाद एक कृष्ण भजन है कृष्णा के नाम से। अब यहाँ पर जो है मामे खान की जो तराने हैं वो आप सुनिए, जो उन्होंने मुर्कियाँ ली हैं वो, और जो बीच में ताने दी हैं उन्होंने, और यहाँ पे देखिए ढोलक का प्रयोग इतना प्यारा है, इतना गजब का है, मतलब बड़ा ही शानदार सा एक भजन है जिसको सुनते हुए आपको ना एक फील आती है, एक एक भक्ति भाव भी आपके अंदर जागेगा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। पांचों जो ट्रैक है वो है मूमल। तो मूमल जो है ये भी अगेन एक ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक है, जिसे इससे पहले भी कई लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, ख़ासतौर पे दप्पू खान जो करके एक सिंगर है, बहुत मशहूर, बहुत बुजुर्ग सिंगर हैं, उनका जो गाया हुआ वर्जन है वो मुझे शायद मामे खान वाले वर्जन से ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि मामे खान का वर्जन बहुत छोटा सा है, ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं है। आप जो है दप्पू खान वाला वर्जन सुनेंगे, आपको वो काफ़ी उसके अंदर डिटेल पता लगेगी। एक स्टोरी है रानी मूमल की जो जो बहुत अच्छे से उन्होंने डिपिक्ट करी है। तो रानी मूमल जो है एक बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रानी थी। जनरली जैसे आप राजस्थान की लोक कथाओं में पाते हैं कि रानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, उसकी जो सुंदरता की जो चर्चे थे वो दूर दूर तक फैले हुए थे, और उनका जो लव अफेयर था वो एक राजा महेंद्र नाम के एक राजा के साथ था। तो राजा और रानी ये जो हैं ये आपस में मिलते हैं एक जगह, और इनको आपस में प्यार हो जाता है। एंड देन राजा, क्योंकि राजा के ऑलरेडी 7 पत्नियां थी, वो बहुत दूर कहीं रहते थे, तो वहाँ से वो जैसलमेर आते थे रानी से मिलने के लिए रात को। इसके लिए क्योंकि उनका एक पूरा रेगिस्तान पार करना पड़ता था, तो जो रेगिस्तान था उसको पार करने के लिए उनके पास एक चीतल नाम का ऊँट था, तो उस ऊँट के सहारे वो रेगिस्तान को डेली रात को आते थे और पार करके जाते थे। अब जो बाकी 7 रानियां थीं जो राजा को देखते थे कि भाई ये डेली रात को हमारे पास नहीं आते, कहीं और चले जाते हैं, तो उन रानियों को लगा कि यार कुछ इनको रोकना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उस ऊँट का पैर तोड़ दिया एक दिन। तो वो राजा जो है उस दिन उस ऊँट पर नहीं चल पाए, और उन्होंने किसी दूसरे ऊँट का सहारा लिया। दूसरे ऊँट का सहारा लेने में उनको समय लग गया, तो वो लेट हो गए रानी के पास तक पहुँचने में। अब वो रानी थी, रानी भी इंतज़ार करते करते जो है वो मतलब परेशान हो गई कि वो क्यों नहीं आए, राजा क्यों नहीं आया। तो रानी की एक वो थी, एक उनकी शायद सहयोगी रही होगी या जो भी उनके असिस्टेंट्स के लिए होते हैं लोग, तो उसमें से एक रानी जो एक लड़की जो थी उसने एक राजा का रूप धारण करके, ताकि रानी का दिल लगा रहे, तो वो राजा का रूप धारण करके वो रानी के साथ सो गई। अब जब महेंद्र जो है, जो राजा महेंद्र थे, जब वो एक्चुअल में आए वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि रानी के साथ कोई मर्द सो रहा है। उनको नहीं पता था कि एक ये औरत है, तो इस बात से खफा होकर जो है महेंद्र चले जाते हैं वापस। और रानी जो है फिर जब, क्योंकि फिर महेंद्र ने आना छोड़ दिया, तो रानी जो है वो सूख के एकदम वो हो जाती है उनके से गम से। अब रानी जो है वो फिर कई संदेश भेजती है अपने किसी सेवक के माध्यम से, वो सेवक जो है राजा तक पहुंचता है, उनको बताता है। तो राजा वो बताता है कि राजा कि मैंने ऐसा ऐसे देखा है। अब वो सेवक आके जब रानी को बताता है तो रानी कहती है कि नहीं, मैं उनसे खुद मिलने जाऊँगी, तो राजा सोचता है कि यार ये मेरे से मिलने आ रही है, इसका मतलब शायद ये इसने कोई पाप नहीं किया। तो वो कहता है कि नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आऊँगा। तो राजा आता है यहाँ पे, और जैसे ही वो आते हैं तो उनको दिमाग में एक तरह का फितूर आता है। वो कहते सोचते हैं कि यार चलो रानी की थोड़ी परीक्षा ली जाए। तो वो अपने किसी सेवक के हाथों ये संदेश भेज देते हैं कि राजा को रास्ते में एक नाग ने काट लिया और वो मर गए। तो जब ये संदेश रानी मूमल तक पहुंचता है तो रानी मूमल जो है वो इसी गम से जो है एकदम वहीं पे मूर्छित होकर मर जाती है। अब जब राजा तक ये खबर आती है कि रानी की डेथ इस तरह से हो गई है उनके इस झूठ की वजह से, तो वो राजा को भी शौक लगता है, राजा भी डेथ हो जाती है। तो एक बड़ी मशहूर कहानी है राजस्थानी कल्चर की, जो सालों से मेरे ख्याल से कितने पता नहीं, शायद 2000 सालों से ये कहानियाँ इस तरह चल रही है। तो इसी कहानी में से एक अंश उठाकर ये गीत लिखा गया है बहुत किसी ट्रेडिशनल पोएट के थ्रू। और ये जो गीत है इसको भी अगेन बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म किया है। ये मुझे मामे खान की आवाज़ में ठीक ठाक लगा बस, मतलब कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा। अगला जो गाना है ना, इसके अंदर देखिए अभी ट्रेडिशनल हमने बात करी थी, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की यूज़ राजस्थानी फोक में होता है, लेकिन अब देखिए अच्छे कलाकारों की क्या खूबी होती है, वो चीज़ों को लेके चले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। किस तरह से लेके जाते हैं, वो अलग अलग नए नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका कोलाबोरेशन करते हैं, ताकि जो वर्ल्ड ओवर की जो ऑडियंस है उनको समझ में आए कि यार ये क्या नई चीज़ सुन रहे हैं हम लोग। तो ये मामे खान ने किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट लाइक सेक्सोफोन इस्तेमाल हुआ। स्टार्टिंग का जो पीस है वो सेक्सोफोन से स्टार्ट होता है, देन वो गाना जो है गाने का नाम है बिछड़ो। तो ये भी अगेन एक और बड़ा ही प्यारा ट्रेडिशनल गाना है, और ये बहुत ही प्यारा गाया है मामे खान ने। आप सुनेंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। आखिरी जो गाना है वो है लोली। लोली मीन्स ये भगवान कृष्ण के लिए, नन्हे कृष्ण जो है उनको उठाने के लिए, जगाने के लिए कि भाई देखो जाग जाओ, तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे लिए मक्खन बना रही है। तो इस तरह का एक वो गाना है, बहुत अच्छा प्यारा सा गाना है। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, मामे खान का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये वो पहला गाना था जो उन्होंने सीखा था अपने पिता से, है ना। तो क्योंकि वो जब मेरे ख्याल से 5 या 6 साल की उम्र से गा रहे हैं, और ये पहला गाना था जब उन्होंने ये सीखा था गाना। तो ये एल्बम है, बहुत ही प्यारी सी एल्बम है, डेजर्ट सेशन के नाम से, और डेजर्ट सेशन विद मामे खान। आप इस एल्बम को ज़रूर सर्च करें, सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा संगीत सुनने के शौकीन हैं, यू विल लव इट। क्योंकि जो गायकी है, जो स्टाइल है, जो ट्रेडिशनल अंदाज है परफॉर्म करने का, आपको वो सब चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये किसी भी मंगनियार घराने के सिंगर के लिए पहली क्राउड फंडेड एल्बम है। यानी कि सोचिए, पुराने ज़माने में जो सिंगर होते थे वो कैसे सर्वाइव करते थे, उनको लोग जो हैं दान और ये सब चीज़ें देते थे, अपने पैसे देते थे उनकी गायकी को देखकर। सेम वे यहाँ पे लोगों ने पैसा लगाया है इस एल्बम को प्रोड्यूस करने के लिए, और उससे मामे खान ने ये एल्बम तैयार करी है। तो बहुत प्यार से इसमें बहुत सारे लोगों का प्यार शामिल है इस एल्बम के अंदर। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो आप सुनते हैं कंटेंट, उनमें से बीच में से एक ऐसा ही कंटेंट है जिसके ऊपर आपकी नज़र, आपकी पारखी नज़र या आपके पारखी कान ज़रूर पहुंचने चाहिए। तो आप अपने फेवरेट म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे जाएं, इस एल्बम को सर्च करें और सुनें, और मुझे भी बताएं कि आपको ये कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले एपिसोड में, किसी नए एल्बम पर, किसी नए म्यूज़िक पर बात करते हुए। तब तक इजाज़त दीजिए अपने साथी सजीव सारथी को। नमस्कार।
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.